हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय का ये सुप्रसिद्ध श्लोक जिसका आज हम लेंगे भाग 27। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता, जिसके ये पांच पहलू, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन, तो हम वंदनम पर हैं। हमने ये टॉपिक लिया फ्रॉम ईमेल टू नीमेल। पिछली बार हमारे सत्र की शुरुआत हमने की थी इस कोट से, प्रेयर इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइन हार्ट। और इसे एक्रोनिम बनाते हुए हमने समझा कि ये जो शब्द है अंग्रेजी में, जिसे प्रे बोलते हैं, प्लीड, रिपेंट, अप्रिशिएट एंड यर्न। और रूप गोस्वामी हमारे एक प्रमुख आचार्य, जिन्होंने तीन प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामयी। भगवान का गुणगान जो पहली श्रेणी है, संप्रार्थनात्मिका, फिर हमारी स्वयं की दयनीय स्थिति को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रखना, और फिर भगवान से कुछ मांगना, याचना या लालसा। तो वंदनम के ये चार स्वरूप, दैन्यता, कृतज्ञता, स्तुति और प्रार्थना। हम स्तुति प्रारंभ किए हैं हमारे पिछले कई सत्रों से, नाम रूप गुण लीला। पिछले बार हमने लिया भगवान की महानता और भगवान की मधुरता। हमारे प्रार्थनाओं में इन दोनों का समन्वय होना चाहिए, जहां पर हम भगवान की काबिलियत और भगवान की नियत, काबिलियत और नियत, ये दोनों हम समझते हैं। द फोर सी इन रिगार्ड्स टू प्रेइंग, कंपैरिजंस, कॉन्ट्रास्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और को रिलेशन, दैट इज पर्सनल कनेक्शन विद कृष्णा। प्रेयर इन रिगार्ड्स टू सोशल पोजिशन एंड इनर डिस्पोजिशन। तो हमने तीन उदाहरण लिए, वृत्रासुर, भरत महाराज जो हिरण बन चुके थे, और गजेंद्र जो कि एक हाथी के रूप में। तो कैसे बाहरी दृष्टिकोण से कोई इनसे आशा नहीं रख सकता कि ये इस प्रकार की दिव्य शुद्ध प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि बाह्य हमारी स्थिति वो मायना नहीं रखती। आंतरिक भाव वो हमारा क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अंतिम स्लाइड हमारी पिछली बार, प्रेयर एंड प्रेयरफुलनेस, एक्ट ऑफ प्रेइंग एंड कल्चर ऑफ प्रेइंग। तो इसे हम और आज समझेंगे, परंतु जो अंतिम स्वरूप है वंदनम का, उसे साथ में लेते हुए प्रार्थना। तो जब हम वंदनम में स्तुति और फिर अब प्रार्थना पर आते हैं, हमारी दयनीय स्थिति समझ लेने के बाद पश्चात जब हम भगवान से कुछ याचना करते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं रिक्विजिशन अंग्रेजी में, परंतु केवल उतना ही काफी नहीं है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हम भगवान के सामने अर्जी रख रहे हैं, रिक्विजिशन, याचना कर रहे हैं, लालसामय, कुछ लालसा करते हुए, तो उसके साथ कमिटमेंट जरूरी है, वचनबद्धता। इसलिए डिपेंडेंस, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम भगवान पर आश्रित हो रहे हैं, ऐसा हम दर्शा रहे हैं कि हम भगवान पर निर्भर हैं। जैसे कि कोई भिखारी जब किसी अमीर व्यक्ति से कुछ मांग रहा है, अर्थात वो ये दर्शा रहा है कि कैसे वो निर्भर है उसकी सत्ता पर। तो अब अक्सर ये दोनों हमने अलग अलग कर क्यों बताए हैं, प्रार्थना में याचना और वचनबद्धता। क्योंकि होता क्या है कि याचना तो बहुत लोग करते हैं, मांगते बहुत लोग हैं, परंतु जीवन उस प्रार्थना पर आधारित यदि नहीं है, जैसे कि पिछली स्लाइड क्या थी, प्रेयर एंड प्रेयरफुलनेस, एक्ट ऑफ प्रेइंग, कल्चर ऑफ प्रेइंग, तो कमिटमेंट। तो मार कहां खा जाते हैं, विशेष रूप से कलयुग में हम लोग, ये सेकंड पार्ट जो है, कमिटमेंट में मार खा जाते हैं। जैसे मैं श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद जब पहली दफा पढ़ रहा था, तो वहां पर वर्णन है कि भगवान जन्मे कंस के कारागृह में। अब वसुदेव और देवकी जो भगवान के माता पिता बने, जो इनको कंस ने बंदी बना रखा था, तो कंस भी प्रतीक्षा में था भगवान के जन्म की, और वसुदेव देवकी भी प्रतीक्षा में थे, दोनों प्रतीक्षा में। परंतु दोनों का मनोभाव क्या था प्रतीक्षा करते समय, देवकी वसुदेव, इनका मनोभाव वात्सल्य भाव, और कंस वो मारना चाहता था ज्ञान से, पैदा होते ही खत्म कर दूंगा मैं, ये उसका भाव। तो यहां पर ये समझ में आता है कि दो व्यक्ति यदि प्रतीक्षा कर रहे हैं तो एक समान नहीं है। उनके भाव से समझ में आएगा कि वो प्रतीक्षा अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो अब यहां पर याचना और वचनबद्धता, इसके संदर्भ में जो मैं कहना चाहता हूं, तो जब भगवान जन्मे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कारागृह में, वो ओरिजिनल जन्माष्टमी, कल्पना कीजिए कि वसुदेव और देवकी जिन्होंने इतने जन्मों तक तपस्या की भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और ऐसी परिस्थिति में जहां उन्हें पता नहीं कि जन्म के पश्चात होगा क्या, क्योंकि भगवान के जन्म से पहले देवकी के 6 पुत्र कंस मार चुका था, तो कुछ पता नहीं कि अब होगा क्या। ये 8वां पुत्र जब पैदा होगा तो इस कारागृह में कुछ चमत्कार होगा, या वैसे ही कंस ने जैसे 6 को मार दिया ये 8वें पुत्र को भी मार डालेगा, और उसके साथ साथ वसुदेव जी और देवकी इनके हृदय में वो एक उल्लास, दिव्य उल्लास, भगवान प्रकट होने वाले हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स, भय, भगवान की सुरक्षा, भगवान के जन्मोत्सव का उल्लास, ये सब मिक्स्ड फीलिंग्स। तो भगवान जब जन्मे तो वसुदेव जी अब विधि के अनुसार एक पिता का उत्तरदायित्व निभाते हुए, कि वैदिक संस्कृति में जब एक पिता पुत्र को जन्म देता है तो वो दान देता है, सबसे पहले दान दक्षिणा करता है। तो उन्होंने अब तुरंत, उनके जब जहन में ये बात आई कि मुझे अब दान दक्षिणा करनी है, क्योंकि पुत्र जन्मा है, कोई साधारण पुत्र नहीं है, तो दक्षिणा भी साधारण नहीं होनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने अपने मन में दक्षिणा दी, क्योंकि वो तो बंदी है, वहां पर बंदी बना रखा है उनको, तो वो शारीरिक रूप से जाकर कैसे दक्षिणा कहीं किसी को देते। तो उन्होंने ध्यान किया, भगवान के जन्म के पश्चात ध्यान में बैठे और मानसिक दक्षिणाएं दी, मानसिक रूप में। तो मन से उन्होंने लाखों गायों का दान किया, अच्छा लगता है ना इस प्रकार की दक्षिणा। तो मन से उन्होंने लाखों गायों का दान कर दिया ब्राह्मणों को, मन में उन्होंने ब्राह्मणों को भोज, लाखों ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, जो दीन दुखियारे गरीब उनको अलग अलग प्रकार के जो जरूरत की सामग्रियां हैं वो सब दान दक्षिणा में दे दी, सब मानसिक। तो हां, यहां तक जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु उससे ज्यादा अच्छा कब लगा, जब वसुदेव जी रिहा हुए, when he was released from the prison house of Kamsa, जिस दिन कंस ने, अब वो सारी लीला मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे भगवान ट्रांसफर हुए, और काफी समय उसके पश्चात फिर कंस ने देवकी वसुदेव को रिलीज किया, कि उसे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, ये आकाशवाणी सही थी गलत थी, वो कंफ्यूज था, क्योंकि भगवान ने अपने आप को इस प्रकार से ट्रांसफर करा लिया कि कानो कान किसी को खबर नहीं, यहां तक कि नंद महाराज को भी पता नहीं कि क्या हुआ। तो जब कंस ने फाइनली सोचा कि अब इनको बंदी बनाकर रखने से क्या फायदा, तो अपनी बहन और अपने बहनोई दोनों को जब रिहा किया, जिस दिन वसुदेव जी रिहा हुए, कल्पना कीजिए क्या किया उन्होंने जिस दिन वो रिहा हुए। जो मानसिक रूप में उन्होंने ध्यान दिया था, एग्जैक्टली वो सारे फिगर्स उन्होंने अभी फिजिकली उसका दान दिया। अब ये नहीं कि अरे वो तो उस टाइम की बात थी, वो तो मन में कर दिया, अब कौन उसको याद रखता है। साधारण कोई कलयुग का जीव होता तो रफा दफा कर देता, भगवान जानते हैं अभी वो मन में किया ना, मन में होना चाहिए सब। मन में दिल में रखो, प्रेम दिल में होना चाहिए। लास्ट टाइम हम चर्चा कर दिखावा वगैरह क्या। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ वसुदेव, द कैरेक्टर, हाउ प्रिंसिपल्ड वॉज वसुदेव। फर्स्ट थिंग ही गेव फिजिकली इन चैरिटी एवरीथिंग वॉट ही हैड मेंटली गिवन। तो भगवान से मांगना और उसके साथ साथ हमारे स्वयं की जिम्मेदारी निभाना, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्ट ऑफ प्रेइंग, कल्चर ऑफ प्रेइंग, ये दोनों का बैलेंस कितना जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति, उसको संतान पुत्र चाहिए था, तो भगवान से मन्नतें मांग रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, नंगे पैर तीर्थयाटन कर रहा है, अलग जितनी सारी नदियां हैं उन सब में उसने स्नान कर लिया, फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद फिर उसने डिसाइड किया कि अब निर्जल मृत्यु तक, जब तक कि संतान प्राप्त नहीं होती, तो निर्जल उसने शुरू कर दिया। तो जब ऐसी स्थिति उसकी हो गई, इतनी विकट परिस्थिति हो गई, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उसके सामने हाथ जोड़ा। भगवान ने हाथ जोड़ा, भगवान ने कहा, बरखुरदार, इतने साल हो गए, मैं जानता हूं तू क्यों ये सब कर रहा है, मैं जानता हूं तुझे पुत्र चाहिए, इसलिए तूने इतने सारे तीर्थयाटन, इतने सारे उपवास व्रत सब कुछ तूने किए इतने वर्षों से, मैं जानता हूं। बरखुरदार हाथ जोड़ के बोलता हूं, पहले शादी तो कर। तो कलयुग जीव की स्थिति क्या है, पुत्र चाहिए, शादी नहीं करनी। हाँ, जिसको कहते हैं कुंवारा बाप, बैचलर डैडी। तो यहां पर हम ये दोनों का समन्वय देखें। प्रार्थना का अर्थ है याचना और वचनबद्धता, रिक्विजिशन एंड कमिटमेंट, डिपेंडेंस एंड एक्शन। तो यदि हम देखें कि ये सारे क्वेश्चंस, सबसे पहले हमें हमारी प्रार्थनाएं जब हम अर्पित करते हैं, तो इन सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मांगना क्या है। अधिकांश लोगों को आप जाकर पूछो, पता करो कि आप जो भी, जिसको आप अपना भगवान मानते हो, सबकी आजकल परिभाषाएं बहुत अलग हैं, तो सबसे पहले, जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण कि आपको क्या चाहिए, फिर आप डिसाइड करते हो कि कहां से लोगे, है ना। आपको यदि शक्कर खरीदनी है तो पहले ये निर्धारित करोगे कि शक्कर खरीदनी है, फिर जाओगे किराने दुकान पर। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फर्स्ट व्हाट टू आस्क। जैसे श्रील प्रभुपाद एक कहानी सुनाया करते थे कि बंगाल में एक नाविक था, बोटमैन, और रोज बस यही उसकी जीविका थी यहां से वहां वो नाव पर लोगों को बिठाकर नदी पार कराता, तो उसकी एक समस्या उसके इस व्यवसाय में, उसकी एक सबसे गहन समस्या ये थी कि जो तट से लेके उसकी नाव जहां पर खड़ी रहती, तो वो पूरा इतना पथरीला रास्ता था जहां पर वो ऐसे नोकीले कंकड़ उसको चुभते थे। तो रोज सुबह उसको वो नाव पर जाने के लिए उस पथरीले रास्ते से होके जाना पड़ता। तो रोज भगवान से प्रार्थना करता, याचना करता। तो एक बार उसे उसके एक मित्र ने पूछा कि ये रोज तुम भगवान से इतनी प्रार्थना करते हो, मान लो कि भगवान आ जाए तुम्हारी ये प्रार्थना पूरी करने के लिए, भगवान आ जाए तो क्या मांगोगे तुम? अच्छा, भगवान अगर आ गए तो मैं सबसे पहले बहुत सारे मखमली कंबल मांगूंगा। क्यों? अरे क्यों क्या, सबसे बड़ी समस्या है मेरे जीवन की, तुम्हें क्या पता? कौन सी समस्या है? ये जो नाव को पकड़ने के लिए मैं निकलता हूं तो ये नोकीले जो पत्थर चुभते हैं। तो प्रभुपाद ने ये कहानी सुनाई। अब देखो, आप लोगों को लग रहा है सही मांग है ना, अच्छी बात है, मखमली कंबल। प्रभुपाद ने कहा, अरे भगवान अगर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें नाव चलाने क्या जरूरत है? वो उनके दर्शन मतलब नैया तुम्हारी पार हो गई, तुम क्या दूसरों को पार कराओगे? तुम्हारी नैया पार हो गई। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि अधिकांश कलयुग में इस नाविक के समान है कि इतने ज्यादा उसके अंदर, किसके अंदर, अपनी समस्याओं के अंदर रचे पचे हैं कि यदि भगवान भी सामने आ जाए। वही प्रभुपद एक और उदाहरण दिया करते थे कि ये वृद्ध महिला, इतनी वृद्ध कुबड़ था उसके पीछे झुककर चलती थी, और वो अपने पीठ पर रोज ये सूखी लकड़ी लेकर, ईंधन के लिए सूखी लकड़ी लेकर वो जाकर बेचती थी। तो राजा ने एक देखा एक बार कि अरे ये बूढ़ी महिला, क्या हुआ कि जो भी गठरी थी वो सूखी लकड़ी की गठरी वो गिर गई एक बार उसके पीठ से नीचे। तो राजा ने देखा टहलते हुए कि अरे ये मेरे राज्य की, ये मुझे पता ही नहीं कि इतनी मेहनत कर रही है। तो राजा उसके पास गया और माँ जी क्या चाहिए आपको? तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। तो माँ जी ने राजा को देखा पहले ऊपर से नीचे तक, कौन हो तुम? मैं राजा हूं, आपके राज्य का राजा हूं मैं, मांगो, कुछ चाहिए आपको, आपकी कुछ मदद करूं? हाँ, ये गठरी नीचे गिर गई, उठा के पीठ पे रख दो। तो प्रभुपाद ने ये दो उदाहरण दिए कि हमारी स्थिति ऐसी है कि ये सब भौतिक संसार की गठरी लेकर घूम रहे हैं। कभी गठरी ऊपर रहती है तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये पूरे कर्म की गठरी मेरे ऊपर है, इसलिए हमको लगता है कि हम सफल हैं, दैट इज माई सक्सेस, कि ये बोझा ऊपर है। और जब कभी बोझा नीचे गिर जाता है तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अरे बोझा कहाँ गया, बोझा कहाँ गया, बोझा कहाँ गया, बिना बोझा के। इसलिए बहुत बार जब कोई भक्त बन जाता है भगवान का, विशेष रूप से जब ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लेता, तो लोगों को ये चिंता रहती, तो अभी तेरा बोझा नहीं रहेगा, गठरी कहां गई तेरी? तो बिना गठरी के कोई जीवन है? तो वो सूखी लकड़ी की गठरी, वो जब तक पीठ पे नहीं लाद के चलता बद्ध जीव, तब तक उसको लगता नहीं है कि कुछ जीवन चल रहा है। और यदि सौभाग्यवश, भाग्यवश यदि राजा जैसा भी कोई व्यक्ति या भगवान भी सामने आ जाए, तो वो इतना मोहग्रस्त रहता है उस सूखी लकड़ियों की गठरी में कि भगवान भी आ जाए, भगवान पूछे कि मांगो, तो हम क्या मांगते हैं? ये जो गिर गई है गठरी, इसको फिर से पीठ पे डालो। इसलिए क्या मांगना है, किनसे मांगना है, कब मांगना है और कैसे मांगना है। एक गांव में दो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक ने भगवान से क्या प्रार्थना करी कि भगवान मुझे अगला जीवन ऐसा देना, ऐसा देना अगला जीवन कि मुझे केवल धन मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, देना नहीं पड़े मुझे, है ना। अंदर से सबकी इच्छा यही होती है ना कि धन मिलता रहे, मिलता रहे, देना नहीं पड़े किसी को। तो उसने भगवान से ये मांगा कि बस अगले जन्म में ऐसी स्थिति मेरी बना दो कि मुझे केवल धन मिलता रहे, मिलता रहे, किसी को देना नहीं पड़े। और दूसरे ने क्या मांगा कि मैं जितना हो सके मैं बस दूं लोगों को, दूं। दूसरे ने ये प्रार्थना की। तो दोनों मरे। अगले जन्म में ये पहला वाला जो ये मांग रहा था कि मुझे ऐसी स्थिति में रखना कि मुझे किसी को कोई धन नहीं देना पड़े और मुझे मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, उस देश में, उस गांव में वो भिखारी बना, है ना। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं, ले कटोरा लेके घूमता रहे। कभी कोई भिखारी से अपेक्षा रखता है कि ये भिखारी मेरे को कोई दान देगा? नहीं, कोई तेरे से अपेक्षा नहीं रखेगा। और ये दूसरा व्यक्ति उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना, क्योंकि इसने क्या मांगा था कि मुझे केवल मैं देता रहूं, देता रहूं, तो देते रहने के लिए इसको इतना धन देना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इसको सबसे अमीर व्यक्ति बनाया और वो पहला वाला उसको उसी गांव का भिखारी सबसे बड़ा बनाया। तो सोच समझ के मांगो। क्योंकि भगवान का जो दिमाग है ना, वो हमारे दिमाग से उनका प्रोसेसर बहुत फास्ट है और शार्प है। जैसे ऐसे ही एक व्यक्ति ने भगवान से मांगा, भगवान मुझे एक ऐसी नौकरी जहां पर लोग अपना अपना काम करें मेरे अंडर और मुझे लाकर पैसे देते रहे, अपना अपना काम करते रहें और मुझे लाकर पैसे देते रहें। उसको नौकरी मिली सुलभ शौचालय में। सुलभ शौचालय में बैठे रहते ना वो लोग अपना अपना काम करके चले जाते हैं, है ना, इसको पैसे दे देते। क्या कहा था मैंने? सोच समझ के। तो इसलिए ये अब अगर जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि आप यदि टाटा बिड़ला को जानते हो और टाटा बिड़ला के पास जाकर यदि आप एक पेन की रिफिल मांगते हो, पेन की रिफिल मिलेगी मिस्टर टाटा? अपमान है ना उनका भी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से सांसारिक चीजें मांगना, ये संसार की चीजें, वो किसके समान है? जैसे कि किसी को मच्छर मारना है। बहुत सुंदर उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। किसी को मच्छर मारना है तो मच्छर मारने के लिए उसने तोप का इंतजाम किया, कैनन। अभी ये दृश्य की कल्पना कीजिए आप कि उसके कमरे में मच्छर घूम रहा है और उस मच्छर को मारने के लिए उसने क्या इंतजाम किया है, तोप लेके आया है। इसको इमेजिन कीजिए, कितना बड़ा मजाक है ना। अब अपने स्थिति को इमेजिन करते हैं, वही कर रहे हैं हम लोग। हम लोग उसके ऊपर हंसते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे ऊपर हंसते हैं, क्योंकि हम भी यदि भगवान श्री कृष्ण से सांसारिक चीजें मांग रहे हैं तो हम अपमान कर रहे हैं। जैसे कि मच्छर को मारने के लिए तोप निकालना तोप का अपमान है। तो इसलिए यहां पर जब हम प्रार्थना याचना तो व्हाट टू आस्क, जब ये क्लियर होगा, इसकी क्लैरिटी होगी कि मुझे कोई सांसारिक चीजें नहीं चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज को जब भगवान नरसिम्हदेव ने पूछा, प्रहलाद मांगो, हमारी स्थिति में तो भगवान को बोलना पड़ता है बस करो, प्रहलाद महाराज कुछ मांग ही नहीं रहे थे, तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को फोर्स किया कि कुछ मांगो प्रहलाद, मुझे कुछ देने की इच्छा है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, भगवान यदि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी मैंने भक्ति की तो मुझ में और एक वणिक बिजनेसमैन जो व्यापारी है, मुझ में और उसमें अंतर क्या है। तो मैंने तो फिर व्यापार कर लिया ना आपके साथ, कि मैंने ये सब कुछ किया, मैंने कोई मन्नत मांगी ताकि वो सब पूरी हो जाए, इतने सोमवार इतने शनिवार इतने ये वो सब कुछ, और फिर चलो भाई आपने मेरा काम पूरा किया, मैंने जो मन्नत आपके लिए इतना कर दिया, चलो आप आपके घर मैं अपने घर, अब बीच में इंटरवीन मत करना। नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो पहले से ही हिरण्यकशिपु का पुत्र पैदा हुआ हूं। क्या नम्रता है देखिए उनकी, आई एम बॉर्न इन अ दैत्य फैमिली, डोंट एल्योर मी माई डियर लॉर्ड। अब प्रहलाद महाराज अगर ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे प्रलोभन मत दीजिए, मैं तो पहले से एक राक्षसी परिवार में पैदा हुआ हूं, तो क्या मांगना है। जब ये समझ में आएगा कि यदि हमें वो सर्वोच्च चीज भगवान से मांगनी है, क्या है, कृष्ण प्रेम, तब जाएंगे सर्वोच्च व्यक्ति के पास। और कब मांगना है, तब नहीं जब विकट परिस्थिति आती है, तब हमें भगवान से हर क्षण, क्योंकि इस भौतिक संसार में रहना, हर दिन इस भौतिक शरीर के साथ जीना आत्मा के लिए विकट परिस्थिति है। और केवल विकट परिस्थिति है इसलिए नहीं, भगवान जो कुछ हमें प्रदान कर दे रहे हैं, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में, कि आवर प्रेयर शुड बी ऑलवेज निरंतर, अप्रतिहत और बिना किसी अभिलाषा के, वो प्रार्थनाएं हमारी होनी चाहिए। और कैसे, ये तो हम इसकी चर्चा कितने सत्रों से कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के समक्ष हमें जाकर वंदना या प्रार्थना अर्पित करनी है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, सिलेक्टिव फेथ कैन बी डिसेप्टिव फेथ, स्पेशली इन कलयुग। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें यह बताया गया है कि जब धर्म का इस्तेमाल केवल अर्थ के लिए किया जाए तो वो है कर्मकांड। और हम आजकल देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर इतनी तादाद में लोग अगर जाते हैं, मान लीजिए तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी दर्शन लेने के लिए 30 सेकंड के दर्शन के लिए आपको कई बार दो दो तीन तीन दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा। तो इतनी तपस्या, क्या लग रहा है आपको कि तिरुपति बालाजी से बहुत प्रेम है? नहीं, तिरुपति बालाजी जो समृद्धि, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले देखते हैं कि किन किन को इन्होंने समृद्धि दिलाई, मतलब बेसिक मेंटालिटी क्या है। बेसिक मेंटालिटी कम से कम नहीं जाने वालों से तो ठीक है, उतना रहम कर सकते हैं उनके ऊपर, परंतु बेसिक मेंटालिटी क्या है? बेसिक मेंटालिटी ये है कि बालाजी मैं दूध अर्पित कर रहा हूं, उसका रबड़ी बना के आप देना मुझे। तो मेरे तरफ से दूध, आपकी तरफ से रबड़ी, मेरे तरफ से नींबू, आपकी तरफ से शिकंजी, नींबू पानी। तो ये डील। तो आपको लगता बालाजी फिर क्यों शिकंजी बना बना के दे रहे हैं, क्यों रबड़ी बना बना के दे रहे हैं? क्योंकि बालाजी सोचते हैं कि अरे कलयुग के जीव अगर मैं नहीं दूंगा तो कभी नहीं आएंगे ये लोग। तो आपको क्यों लगता है कि यहां पर लाइन क्यों नहीं लग रही है मदन गोपाल जी के आगे? क्योंकि यहां पर वो दूध की रबड़ी नहीं बन रही है। उल्टे होता क्या है कि आप जो दूध लेके आ रहे हो, रबड़ी बना के राधा रानी मदन गोपाल जी को ही खिला रही है, आप ही खाओ, चलो बैठ के हम दोनों खाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत दूध बचा था वो भी चला जाता है। इसलिए डर डर के डायरेक्टली कृष्ण के पास लोग डर डर के आते हैं कि भाई यहां पे ये भगवान थोड़े डेंजरस हैं, संभल के जाना इनके पास। तो होता क्या है कि इसको बोलते हैं सिलेक्टिव फेथ। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सिलेक्टिव फेथ क्या है। प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं कि बाहर लोग वंदना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हां लगे हुए हैं, परंतु हमें समझना है कि हम भी जो पहले अलग अलग प्रकार से भगवान के समक्ष जाकर कुछ प्रार्थनाएं अर्पित करते थे, प्रेयर्स अर्पित करते थे, तो वो क्या वो हमारा सिलेक्टिव फेथ था या कंप्लीट फेथ में हमने प्रार्थना की? वन इज सिलेक्टिव फेथ, अदर इज कंप्लीट फेथ। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो प्रार्थना करता है, जब वंदना अर्पित करता है, तो वो भगवान को किस लेवल पे समझा है, उससे समझ में आएगा कि उसका कंप्लीट फेथ है या फिर सिलेक्टिव फेथ है जो कि डिसेप्टिव होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम सबको बताया जाता है, जैसे हमने वो स्लाइड देखा, गॉड इज ग्रेट, ग्रेटनेस ऑफ गॉड एंड स्वीटनेस ऑफ गॉड। तो पावर अक्सर क्या देखा जाता है कि भगवान के समक्ष जब कोई प्रार्थना अर्पित करने जाता है तो भगवान की काबिलियत, भगवान की जो शक्ति है, कोई व्यक्ति किसके समक्ष प्रार्थना करेगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है कि नहीं, उसी के समक्ष जाके मैं प्रार्थना करूंगा। तो ये सब सिखाया जाता है कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, हम लहान है, ये सब कुछ। तो पावर, भगवान का पावर देखते हुए, परंतु इसके साथ वो ये नहीं देखता कि भगवान जो सुप्रीमली पावरफुल हैं, उसके साथ साथ भगवान सुप्रीमली इंटेलिजेंट भी हैं। तो सिलेक्टिव फेथ वाले जो होते हैं, प्रेयरर जो प्रार्थना करते हैं, सिलेक्टिव फेथ वाले, वो लोग क्या कहते हैं भगवान से, भगवान शक्ति आपकी होगी, बुद्धि मेरी होगी। डोंट यूज योर इंटेलिजेंस टू फुलफिल माय प्रेयर्स, यूज योर पावर, I will give my intelligence ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिलेक्टिव फेथ वाले। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि भगवान की शक्ति तो असीमित है, परंतु हमारी बुद्धि कुत्सित है। सो बेसिकली दोज हु आर इनटू सिलेक्टिव प्रेइंग और सिलेक्टिव फेथ इन देयर प्रेइंग, दे वॉन्ट टू यूज द पावर ऑफ गॉड थ्रू देयर इंटेलिजेंस। अब इसमें थर्ड जो लेवल है वो है इंटेंशन। वहां तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। भगवान की नियत को पहचाने, भगवान के इंटेंशन को पहचाने, वो हम देखेंगे जब हम सांत्वन, तो सांत्वन में हम डिस्कस करेंगे भगवान के इंटेंशन को ज्यादा विस्तार से। तो यहां पर पावर, इंटेलिजेंस एंड इंटेंशन। इफ वी वॉन्ट टू पुट कंप्लीट फेथ इन कृष्णा, देन वी शुड हैव फेथ इन हिज इंटेलिजेंस एंड हिज इंटेंशन ऑल्सो। अधकुचड़ा जो विश्वास है, हाफ हार्टेड फेथ जो है वो क्या है? नो 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 नो, आई ओनली बिलीव इन द पावर। इनफैक्ट आई डोंट वॉन्ट कृष्णा और गॉड टू यूज हिज इंटेलिजेंस, फॉरगेट अबाउट इंटेंशन। नहीं नहीं, मैं मेरी नियत जानता हूं, मेरी नियत मेरे लिए क्या ठीक है। इसलिए कई बार वो भगवान को पूरा प्लान बना के देते, भगवान ऐसे 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 ये सारी चीजें लिस्ट दिया हुआ है, हा? कि इतना बैंक बैलेंस, इतना पर्टिकुलर ये मॉडल चाहिए, सब कुछ, हा? और आपके सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज से आप अरेंज कर लो, बाकी डिलीवरी कब कैसे वो सब मैं बताऊंगा आपको। सो दिस इज द प्लाइट ऑफ अ कंडीशनड लिविंग एंटिटी, सिलेक्टिव फेथ लीडिंग टू डिसेप्टिव फेथ। अब क्या होता है कि दो एक्सट्रीम्स इसके अंदर देखे जाते हैं। यदि उन्होंने जो भगवान से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पूरी हुई तो ब्लाइंड फॉलोइंग हो जाता है, और अगर प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो दुनिया बनाने वाले मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं, रिजेक्टिंग गॉड कंप्लीटली। सो फ्रॉम शोई रिलीजन टू ब्रेजन एथिज्म, ये कॉम्बिनेशन होता है। ये पेंडुलम में हम देखते हैं कलयुग के अंदर कि भगवान 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 ये कर दो वो कर दो, जैसे ही कुछ हादसा हो गया, कुछ ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर सब कुछ लूट गया, तो मैं तो उस भगवान पर विश्वास ही नहीं करता। और इसलिए वो लोग ये सब दिखाते हैं ना फिल्मों के अंदर, वो घंटियां बजाते हुए, तूने यही किया मेरे साथ, इसलिए पूजा था तुझे, बैठा क्यों है अभी, किसको देख रहा है, पत्थर ये हो। अरे भाई किसने बुलाया तुमको पहले? तो ब्लाइंड फॉलोइंग एंड द अदर एक्सट्रीम इज ब्लाइंड रिजेक्शन। प्रभुपाद का बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम जो हर समय मुझे याद आता है, ये व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया, व्हाई शुड आई ब्लाइंडली बिलीव इन दिस कृष्णा ऑफ योर्स? तो प्रभुपाद बोले, व्हाई आर यू ब्लाइंडली रिजेक्टिंग कृष्णा? तुम ब्लाइंडली रिजेक्ट भी तो कर रहे हो, कभी जाना तुमने कि कृष्ण कौन है? बिना जाने क्यों? जैसे मैं एक दिन खड़ा होकर बोलूं बराक ओबामा, आई डोंट बिलीव, आई रिजेक्ट बराक ओबामा। अच्छा, तो भाई क्या क्या बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? मैंने देखा नहीं अभी मिलने नहीं आया मुझे, बस। जैसे एक व्यक्ति ने बोला, माइसेल्फ एंड बिल गेट्स आर ऑन द सेम लेवल। कैसे भाई, हाउ? ही नेवर कॉल्स मी, आई नेवर कॉल हिम, सेम है, गुण मिलते हैं हमारे। तो अब आपको हम ये एक वीडियो दिखाएंगे कि जब भी हम कुछ भगवान के संदर्भ में, जिसको रिचुअल्स बोलते हैं इंग्लिश में, या रीति रिवाज, विधि विधान, तो इसके पीछे सब एक साइंस होता है, लॉजिक होता है। पिछली बार भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तो हमारे ये जो पॉइंट है, ब्लाइंड फॉलोइंग अगेंस्ट ब्लाइंड रिजेक्शन।
परंपराएं हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। रूढ़ियों को एक बार भी भूल जाएं तो परंपराएं हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। यहां तक कि बहुत सी परंपराएं तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक से भी मेल खाती हैं। अब एक ही गोत्र में शादी ना करने की हिंदू समाज की प्रथा को ही ले लीजिए, यहां भी साइंटिफिक रीजन जुड़ा है। रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक बीमारी से बचने के लिए सेपरेशन ऑफ जीन्स जरूरी है, यानी अपने नजदीकी रिश्तेदारों या फिर एक ही जीन के लोगों से शादी ना करके जेनेटिक बीमारियों से बचा जा सकता है। अब कान छिदवाने की परंपरा को ही ले लीजिए, इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि ऐसा करने से कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है और साथ ही साथ सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। माथे पर तिलक लगाए शख्स को देखकर आपके दिमाग में पूजा पाठ करने वाले इंसान की इमेज बन जाती है, लेकिन इस पर विज्ञान कुछ और ही कहता है। दोनों आँखों के बीच आज्ञा चक्र होता है, जहाँ तिलक लगाने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। कहा जाता है कि तिलक लगाते समय उंगली या अंगूठे के दबाव से माथे तक जाने वाली नसों का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं जमीन पर बैठकर खाना खाने की। दरअसल पालथी मारकर बैठना एक तरह का योगासन है, इससे मन शांत रहता है और डाइजेशन दुरुस्त बना रहता है। हाथ जोड़कर नमस्ते करने का भी वैज्ञानिक तर्क है। सभी उंगलियों के आपस में दबाव से एक्यूप्रेशर प्रोसेस होता है, इसका सीधा असर आँख, कान और दिमाग पर होता है। इस दबाव से सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। फिर से बात करें खाने की। कहा जाता है कि खाने की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से हो। वजह यह है कि तीखा खाने से पेट में पाचन तत्व और अम्ल एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन सही तरीके से होता है, और अगर तीखे से पेट में जलन की संभावना बने तो उसे आखिर में खाया मीठा दूर कर देता है। पीपल की पूजा का भी वैज्ञानिक तर्क है। दरअसल पीपल की पूजा भूत प्रेत भगाने के लिए नहीं, बल्कि पेड़ों के सम्मान में की जाती है। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, जिससे इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में विवाहित महिला सिंदूर तो लगाती है, लेकिन शायद इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह जानती है। दरअसल सिंदूर में हल्दी, चूना और मर्करी होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। चोटी रखने के पीछे भी कुछ ऐसा ही तर्क है। जिस जगह पर चोटी रखी जाती है, वहाँ दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है और गुस्सा नहीं आता, साथ ही सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। ये थे कुछ लॉजिक जो बताते हैं कि परंपराएं यूं ही बस निभाने के लिए नहीं है। परंपराओं के पीछे छुपे साइंटिफिक लॉजिक समझ लिए जाएं तो फिर उनका दिल से पालन तय ही मानिए। DainikBhaskar.com की रिपोर्ट।
एक प्रश्न यदि मैं पूछूं, किसी शख्स को आप नाचते हुए जब देखते हो तो आप किस निष्कर्ष पर आओगे? क्या आनंद के वजह से वो नाच रहा है या आनंदित होने के लिए नाच रहा है? अ पर्सन इज डांसिंग, इज ही डांसिंग बिकॉज ही इज हैप्पी और इज ही डांसिंग टू बिकम हैप्पी? कंफ्यूज हो रहे हैं आप। जंगल में शेर की शादी थी, फाइनली शेर शादी कर रहा था, तो पूरे जंगल को न्योता था शादी में आने का। तो पूरा जंगल अब तैयार होके शेर की शादी में जा रहे हैं, हमारा राजा है तो सब लोग जा रहे हैं। तो सबसे आगे चूहा जोर जोर से नाच रहा है, जोर जोर से नाच रहा है, सबसे ज्यादा चूहा नाच रहा था। तो मेंढक ने उसको जाके पूछा, मेंढक पूछता है, भाई तू क्यों फुदक रहा है इतना? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू क्यों इतना फुदक रहा है? तो वो चूहा बोलता है, क्यों नहीं भाई, मेरे भाई की शादी है। तो मेंढक बोलता है, भाई तू चूहा, वो शेर, भाई तेरा भाई कब से हो गया? अरे याद नहीं, पिछले साल तू मेरी शादी में आया था, मैं शेर ही तो था पिछले साल। अब पहचान में नहीं आने वाली बात है। तो प्रश्न ये है कि जो नाच रहा है वो क्यों नाच रहा है? हाँ, देखिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूं ना कि ये 31 दिसंबर की पार्टी में जब लोग जाते हैं तो उधर सब लोग नाचते हैं, तो नाच नाच के फिर सब एक दूसरे को देखते हैं कि भाई अब नाच नाच के हम लोग आनंदित होंगे, क्योंकि पैसे भरे हैं। हाँ, तो होना चाहिए ना, आनंदित होना चाहिए, दिखना तो चाहिए कम से कम, क्योंकि क्लब्स में न्यू ईयर्स पार्टी के लिए बहुत पैसे भरने पड़ते हैं। तो ठीक है, वो आनंदित होने के लिए। और कई हैं जो खुश हो गए इतना और फिर नाचना शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर नाचना एक रिचुअल है, अगर नाचना एक रिचुअल है, तो जो आनंदित है वो स्वाभाविक रूप से अपने आनंद को दर्शा रहा है नाचकर। और यदि उसके अंदर आनंद नहीं है तो नाचकर आनंद ले रहा है या आनंद अपने अंदर अर्जित करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक है शुद्ध भक्त, वो जब भगवान के सामने नतमस्तक होता है तो भगवान का प्रेम पहले से अंदर है, इसलिए नतमस्तक हो रहा है। जैसे कि आनंद पहले से है इसलिए नाच रहा है, और हम लोग नतमस्तक होते हैं वो दूसरी कैटेगरी है कि दुखी हैं, चलो नाच के थोड़ा खुश हो ले, इसलिए प्रेम नहीं है, नतमस्तक होके थोड़ा प्रेम अर्जित कर रहे। तो ये तो मैंने जो अभी याद आया, जो वीडियो हमने देखा इसके संदर्भ में, जो अलग अलग प्रकार के जितने भी विधि विधान बताए गए हैं उसके पीछे, सबके पीछे लॉजिक है। और कई बार आप देखो कि यदि उसके पीछे कोई लॉजिक समझ में भी नहीं आए परंतु उसका एंड रिजल्ट क्या है। जैसे मुझे पता है ये जो कई क्रिकेटर्स स्पोर्ट्समैन, तो एक मेरे मित्र थे तो बताते थे कि कैसे क्रिकेट के अंदर ये सुपरस्टिशंस कितने काम करते हैं। मैं जब टेनिस खेलता था तो वहां पर भी, टेनिस में भी सुपरस्टिशंस बहुत होते थे कि आप वो सर्विस करने से पहले वो जो दो बॉल्स होती हैं उसको आप आपके लेफ्ट हैंड से 3 बार घुमाओ और फिर पहली जो आगे बॉल आएगी तीसरे राउंड में उसको जब सर्व करोगे तो एस। क्या है लॉजिक इसके पीछे? होता है भाई, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो ये वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, तो उसका सुपरस्टिशन क्या था कि वो जब पेविलियन से आता बैटिंग करने के लिए तो उनके होते हैं ना पेविलियन में, उनके सबके चेंजिंग रूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, तो उसकी आदत थी कि बैटिंग करने से पहले पेविलियन के जितने टॉयलेट्स हैं वो जा जाके टॉयलेट्स का जो सीट होता है वो बंद करके आता था। पता नहीं उसको ये बात फिट बैठी हुई थी कि अगर एक भी टॉयलेट सीट खुला है आउट हो जाएगा वो। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, तो जैसे ही कभी वो बीच में जब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्लीन बोल्ड हो गया, जीरो पे आउट हो गया, तो सबसे पहले जाके देखता था टॉयलेट सीट मैंने जो नीचे करके गया एक ऊपर है। यही कारण है, यही कारण। एक था वो शायद न्यूजीलैंड कहीं का था वो, तो उसका सुपरस्टिशन क्या था कि एक लाल रुमाल रखता था वो जेब में और वो थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए वो लाल रुमाल। तो अगर वो लाल रुमाल थोड़ी सी बाहर निकली हुई है तो बैट्समैन आउट होगा और कभी उसके हाथ से कैच छूटेगा नहीं। तो बहुत बार क्या होता था कि अब कैच पकड़ना है उसको, पहले वो दिखता था कि लाल रुमाल है कि नहीं, वो बाहर इतनी सी बाहर निकली हुई है कि नहीं, वो बॉल आए रही पहले इसको ऊपर खींचेगा फिर पकड़ेगा। अब ये लोग सब इस प्रकार के ये सुपरस्टिशंस को मानते हुए, लेकिन भाई इतने अच्छे स्पोर्ट्स स्टार हैं और हम जब हाथ जोड़ के नमस्ते बोले हैं क्या है दक्यानुसी ख्यालात वाले, नहीं समझे कोई बात। तो मैं जब इस बार था यूके में तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था पूरे सेमिनार के बाद, फिर एक पूरा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने कहा ठीक है एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे केवल क्वेश्चन आंसर्स का। तो पूरा डेढ़ घंटे का सेशन केवल क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। तो उसके अंदर एक शख्स ने ये प्रश्न पूछा कि ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन होता है ना एक, इफ आई एम गुड व्हाई डू आई नीड टू प्रे, है ना, कि मैं अच्छा हूं मैं अपने अच्छे कर्म कर रहा हूं तो ये सब ये हाथ जोड़ के याचना प्रार्थना वंदनम ये सब इतना सब कुछ बता रहे हैं क्या जरूरत है, बी गुड लॉजिक अच्छा है, जस्ट बी गुड। क्या मानते हैं आप लोग, बस आप ठीक सही जीवन जियो, भगवान के सामने आके सब हाथ जोड़ना नतमस्तक होना ये सब क्या जरूरत है, क्या आप लोग क्या मानते हैं, ईमानदारी से बताइए, कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, घबराइए मत। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा, मैं भी उसको मानता हूं, सही बात है, आप आपका जीवन सही रखिए, एक जेन्युइन लाइफ जिए। तो मैंने उनको कहा कि एक मैं आपको सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, रोज सुबह आप उठते हैं घर का आपका दरवाजा खोलते हैं जो भी न्यूज़पेपर लेने के लिए, दिन में पहली दफा सुबह उठते हुए जब आप घर का दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके चौखट पर उस दिन आप कितना दूध आपको लगेगा कितना राशन लगेगा वो सब अच्छी से किसी ने सजा कर रखा हुआ है। योर डेज राशन इज केप्ट राइट एट योर डोरस्टेप एवरी डे, रोज रोज आप दरवाजा खोलते हैं उस दिन का पूरा राशन आपके दरवाजे पे आपको मिलता है। मैंने उनको पूछा ठीक है आप उसको पहले दिन लेते हो दूसरे दिन लेते हो तीसरे दिन लेते हो, मैंने कहा एक हफ्ता एक महीना कुछ तो आपके मन में विचार होगा ना, क्या विचार होगा आप बताइए, क्या विचार होगा आपके मन में, सबसे पहला विचार क्या होगा, कौन रख रहा है, सबसे पहला प्रश्न क्या होगा, कौन रख रहा है, दूसरा प्रश्न क्यों रख रहा है, और जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है ना। मन में कम से कम एक महीने, छह महीने, एक साल तक अगर आपको आपका राशन एज इट इज जो आपको चाहिए वहां पर रेडीमेड मिल रहा है, तो कम से कम यदि आप सुसंस्कृत हैं, कल्चर्ड हैं, तो आपके दिल में एक बार तो थैंक यू निकलेगा उस शख्स के लिए। मैंने कहा वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस चैंटिंग हरे कृष्णा इज माई थैंक यू टू कृष्णा फॉर प्रोवाइडिंग वॉट एवर आई डोंट डिजर्व। तो यदि मैं हर दिन दिया हुआ राशन, चाहे वो फल के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, दूध के रूप में हो, ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मेरा पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे ये कौन दे रहा है? किराना वाला नहीं, कोई किसान नहीं, केवल फाइनली कहां से ये सब कुछ आ रहा है? Who is giving me everything, my daily necessities? ये पहला प्रश्न क्यों मुझे दे रहा है, जबकि हम कोई रोज भगवान से जाके नहीं मांग रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को जब पूछा गया, प्रभुपाद दिस प्रेयर इन द वेस्टर्न कंट्री, ओ गॉड गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, प्रभुपाद सेड दैट इज वेरी नाइस बट If God doesn't give you the bread, will you still continue to pray? Because otherwise it is not love of God, it is love of bread. ठीक है? तो यदि बिना मेरे मांगे, जैसे वो कहानी है ना, एक बार एक दानशूर व्यक्ति ऐसे ही रास्ते चलते एक भिखारी को अपने घर लाते हैं और उसको भोजन खिलाते हैं। तो भिखारी पूछता है कि आपके घर में इतना ऐश्वर्य क्या कारण है? तो ये व्यक्ति कहता है कि मेरा जीवन भगवान को समर्पित किया हुआ हूं, इस प्रकार से भगवान की बातें करने लगा। तो भिखारी चिल्लाने लगा, अरे कौन सा भगवान, ये सब कोई भगवान नहीं, मेरी दशा ऐसी हो गई, मैं तो मानता ही नहीं हूं, सब बकवास है ये भगवान। व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है कि मैंने तुझे रास्ते से उठा के यहां पे मैं तेरे को खिला रहा हूं और तू मेरे को ही मेरे मुंह पे भगवान को गालियां दे रहा है, दफा हो यहां से, बाहर निकल। तो ये व्यक्ति इतना क्रोधित, फिर भगवान उसके सपने में आते हैं और भगवान कहते हैं तेरे पास इतना भी धैर्य नहीं है, तू एक नास्तिक को नहीं खिला सका आज, अरे मैं रोज करोड़ों सैकड़ों नास्तिकों को खिला रहा हूं, तू एक को नहीं खिला पाया आज। तो वो जो भगवान को गालियां भी दे रहे हैं उसके भी चौखट पे भगवान जाके राशन रख रहे हैं। हाँ, तो कम से कम जब ये मेरे साथ कोई कर रहा है तो मैं क्यों उनके लिए, उनके समक्ष प्रार्थना कर रहा हूं? इट इज माय फर्स्ट थैंक यू कि मैं जिसके लायक नहीं हूं फिर भी आप मुझे रोज ये सब कुछ प्रदान कर रहे हो। इस क्षण हम लोग ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो सांस अंदर बाहर हमारी चल रही है, ये उदाहरण हम देते हैं, कितना ऑक्सीजन हम लेंगे वो सिलेंडर लेकर आए थे पैदा हुए जब, वो हम कहते हैं ना सब कुछ यहां से भगवान द्वारा अरेंज्ड, यूज तो कर रहे हैं परंतु भगवान के सामने आके थैंक यू नहीं निकल रहा। तो जो चोरी छुपे यूज कर रहा है लेकिन थैंक यू नहीं बोलता, तो व्यक्ति क्या बनता है? चोर टू बिगिन विथ। जैसे मेरे को वहां पे ब्रिटेन में एक व्यक्ति बता रहे थे कि आजकल कितने अंधकार में लोग हैं देखिए, तो एक ब्रिटिश अपना बीबीसी पे एक इंटरव्यू देख रहे थे वो, तो इंटरव्यू था एक महिला जिसको अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे लाइफ रिलेटेड। तो ये महिला को जब पूछा गया कि व्हाट इज योर टेक ऑन यू नो मर्सी ऑन एनिमल्स, कि पशुओं के ऊपर दया भावना रखना, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? तो इस महिला ने कहा, सी व्हेन आई हैव माय बेकन एवरी डे, बेकन मतलब सुअर का मांस। अब देखो वो लोग ये सब जो सुअर का मांस बोलने में बहुत अजीब लगता है ना, इसलिए उसको एकदम सोफिस्टिकेटेड नाम दे देते हैं वो लोग, बेकन, पोर्क या बीफ, गाय का मांस बीफ हो गया, स्टेक, ये सब कुछ। तो ये क्या कहती है, मैं शॉक हो गया ये सुन के, वो क्या कहती है इंटरव्यू में, When I have my bacon every day, I make sure that my bacon comes from that farm where pigs are well taken care of. उनको अच्छी से खुले इसमें रखा है, फार्म में रखा है, उनको तकलीफ नहीं दी जा रही, उनको नहलाया जाता है। So that is their mercy on animals. ये तो उनका कंसेप्शन है कि I am being so merciful, see? I otherwise don't eat my bacon. तो उसका मतलब ये हो गया कि मान लो तुम किसी की सेवा करो और सेवा करके फाइनली अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है उसकी अच्छी से सेवा करो, उसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ सब कुछ, फाइनली क्या जैसे कि बकरा काट रहे हैं, पहले उसको खिला रहे हैं खिला रहे खिला रहे, तो बेचारे बकरे को लगता है कि यही है जो मेरा सबसे बड़ा हित चिंतक है। कब तक? जब तक कि उसको समझ में नहीं आता है कि उसका जब गला कटता है। सो दिस इज कलयुग रिलीजियोसिटी, राइचियसनेस, माय पिग्स आर वेल टेकन केयर ऑफ, दैट बेकन ओनली आई ईट। वाह रे वाह, मेडल मिलना चाहिए तुमको। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये जो चार अलग अलग कारण हैं, भय बुद्धि, आशा, कर्तव्य और फिर प्रेम, तो ये प्रार्थना में भी कि जैसे कि कोई बच्चा स्कूल, पहले भय, डर के मारे स्कूल जा रहा है, फिर जब उसे समझ में आता है अरे स्कूल में जाने से डिग्री प्राप्त होगी, तो एजुकेशन प्राप्त करता है उस होप से। सो नेक्स्ट लेवल क्या है? होप। फिर एज अ ड्यूटी कि भाई मेरे माता पिता इतना खर्चा कर रहे हैं, मेरे माता पिता ने मेरी जो परवरिश करी है उनको संभालने के लिए मुझे पढ़ लिख कर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना है एज अ ड्यूटी। बट हु इज द वन हु इज अ टॉप मोस्ट वन हु परस्यूज नॉलेज आउट ऑफ लव फॉर दैट नॉलेज। तो ये है जो भगवान से प्रेम से जुड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, वो सर्वोपरि होते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इफेक्टिव प्रेयर्स की, जिन्होंने भगवान से याचना की और उनकी याचना भगवान ने किस प्रकार से पूरा की। तो सबसे पहले उदाहरण, हमने हाल ही अद्वैताचार्य इनका आविर्भाव दिवस मनाया, तो अद्वैताचार्य इन्होंने भगवान से जब याचना की तो क्या याचना थी उनकी, कि मैं चाहता हूं कि आप अवतरित हों बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु। कोई तो याचना करना बुरा नहीं है, जैसे हमने वो स्लाइड लिया, यू शुड नो व्हाट टू आस्क, देन यू विल नो हुम टू आस्क, एंड देन व्हेन टू आस्क एंड हाउ टू आस्क। तो अद्वैताचार्य इनकी याचना को सिद्ध करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिनका आविर्भाव हम मनाने वाले हैं अगले महीने, और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हम बस अब दो दिन में मना रहे हैं 20 तारीख को, तो अद्वैताचार्य ने न केवल याचना बल्कि उन्होंने अपना कमिटमेंट उसके लिए जो जरूरी है वो उन्होंने किया। इसके पश्चात गजेंद्र का उदाहरण, ये सब इफेक्टिव प्रेयर्स है बाय द वे, कि इन्होंने प्रार्थना की और फिर उसका इफेक्ट इनको मिला। तो गजेंद्र ने पहले स्वयं अपने बल पर उस मगरमच्छ को मारने की कोशिश की, परंतु और उससे पहले अपने जो भी उसके रिश्तेदार वहां पर खड़े हुए थे, परिवार वाले, उन सब से याचना की, कुछ नहीं हुआ। फाइनली जब गजेंद्र वो कमल का पुष्प उसी सरोवर से लेता है अपनी सूंड में और भगवान को अर्पित करता है, प्रार्थनाएं अर्पित करता है, तो फाइनल उसको जो रेस्क्यू प्राप्त होता है वो उसकी प्रार्थनाओं के वजह से भगवान जब आते हैं। तो गजेंद्र इज द एग्जाम्पल, इसलिए गजेंद्र की प्रार्थनाएं बताई गई हैं कि बहुत ही, क्योंकि ऐसे हृदय विकट परिस्थिति में गजेंद्र ने प्रार्थना की, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यैवै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतम च चरितम सुमंगलम आनंद गायन्ति समुद्र मग्नः। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि भगवान मुझे बस एकांती भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, आपके उस एकांती भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, और आपके श्रवण कीर्तन जैसे समुद्र में मैं हर समय निमग्न रहूं। गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। ये है एक हाथी बाय द वे प्रार्थना कर रहा है, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव प्रेयर्स। द्रौपदी, जब द्रौपदी ने अपने स्वयं के पति उनसे याचना की, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर, इन सब से याचना की, जहां से कोई सहायता जब उसे प्राप्त नहीं हुई, उसने अपने स्वयं की शक्ति उसको इस्तेमाल कर अपने स्वयं की लाज बचानी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। फाइनली द्रौपदी ने जब अपने दोनों हाथ ऊपर फेंकते हुए हे गोविंद हे गोपाल भगवान को जब पुकारा, तो भगवान रेसिप्रोकेट किए, इफेक्टिव प्रेयर ऑफ द्रौपदी। और यह है कुंती महारानी का उदाहरण। भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो कुंती महारानी ने भगवान को रोका, और भगवान को रोकते हुए कैसे रोका भगवान को, ऐसे नहीं कि मत जाओ, कुंती महारानी ने ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं अर्पित की कि भगवान रुक गए कुंती महारानी की ऐसी शुद्ध प्रार्थनाओं को सुनते हुए। इसलिए हम कुंती महारानी की एक प्रार्थना लेंगे जो कि उनकी प्रार्थनाओं में से एक, मुझे मेरी फेवरेट है ये, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में से ये मेरी फेवरेट प्रार्थना है। आइए मेरे पीछे आप लोग दोहराइए, त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृद् रतिम उद्वहता तद्धा गंगे वौघम उदन्वती त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृ रतिम उद्वहता तद्धा गंगे वौघम उदन्वती त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृद् रतिम उद्वहता तद्धा गंगे वौघम उदन्वती। O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. इतनी सुंदर प्रार्थना है ये कुंती महारानी की, कि यहां सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जो कि कुंती महारानी के संबंधी भगवान थे, परंतु कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में, विशेष रूप से इस प्रार्थना में कुंती महारानी जो मांग रही है, ये इसे कहते हैं वंदना। ये एक सैंपल है शुद्ध वंदनम का, जहां पर वो कहती हैं कि जैसे गंगा या एक नदी स्वाभाविक रूप से बहती है समंदर की ओर, वैसे मेरी चेतना हे मधुपति, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी ओर स्वाभाविक रूप से बहती रहे। तो मैंने सोचा इसका हम थोड़ा विश्लेषण कर देखते हैं कि जो उदाहरण इस्तेमाल किया है कुंती महारानी ने, इतना सुंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है, नदी का समंदर की ओर बहना, सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल कुंती महारानी इज यूजिंग। तो मायावादी वो ये उदाहरण बहुत इस्तेमाल करते हैं, नदियों का समंदर में मिलना फेवरेट उदाहरण है मायावादियों का। मायावादी किस पे फोकस करते हैं कि जैसे नदियां बहती 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 समंदर में जाके विलीन हो जाती है, बहुत फेवरेट वर्ड है उनका ये, वैसे ही हम उस परम सत्य में विलीन हो जाएं। परंतु भक्त वो किस पर फोकस करते हैं, यहां पर कुंती महारानी किस पर फोकस कर रही है, शी इज नॉट फोकसिंग ऑन मर्जिंग, शी इज फोकसिंग ऑन फ्लोइंग, भाव के ऊपर। अब देखिए ये नदी के लिए सबसे ज्यादा कठिन है, फाइनली समंदर में जाके मिलना, वो जो मीटिंग पॉइंट है उसमें कोई कठिनाई नहीं है नदी को, परंतु बहने में नदी सबसे ज्यादा कठिनाई का अनुभव करती है। इसलिए भक्त जो हैं वो शॉर्टकट नहीं चाहते, भक्ति का अर्थ है मेहनत। फ्लोइंग शोज हार्डवर्क, मर्जिंग शोज एंजॉयमेंट। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस, व्हाई कुंती महारानी इज यूजिंग फ्लोइंग, फोकसिंग ऑन फ्लोइंग। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा ये जो एग्जाम्पल यूज किया है कुंती महारानी ने, इसमें क्या समझ में आता है, व्हेन रिवर इज फ्लोइंग नथिंग होल्ड्स बैक द रिवर, नथिंग होल्ड्स द रिवर बैक, एंड द अदर इज रिवर होल्ड्स नथिंग बैक। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, हिंदी में मैं बताता हूं आपको, बहती नदी उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े बड़े बीच में पत्थर आ जाएं, बोल्डर्स आ जाएं, रिवर विल ऑलवेज फाइंड इट्स वे टुवर्ड्स द ओशन। तो जो पहला प्रिंसिपल क्या है, नथिंग होल्ड्स बैक द रिवर, कोई ताकत उस नदी को रोक नहीं सकती, एंड रिवर नथिंग होल्ड्स बैक। ऐसा नहीं कि नदी सोचती है कि चलो मैं 30% पानी अपने लिए यहां रखती हूं, 70% समंदर को दूंगी। यह है कॉन्शियसनेस कुंती महारानी का इस प्रेयर में, एंड दिस इज व्हाट वंदनम इज, नथिंग शुड होल्ड अस बैक and we should not hold back anything when we are praying Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जब हम इस consciousness में भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं रखेंगे, तब जैसे कुंती महारानी को भगवान ने न केवल अपना सानिध्य दिया, बल्कि कुंती महारानी को भगवान ने एक ऐसा दर्जा दिया कि आज दिन तक हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं दोहरा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा कुंती महारानी के ऊपर। तो इसलिए आज अंत में हम लोग कुंती महारानी की ये प्रार्थना देखें, जहां पर कुंती महारानी अपनी प्रार्थना के द्वारा जो उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान उनके संबंधी बने। लाइट्स ऑफ।
O Krishna, as the river Ganges forever flows to the sea, let my mind, my being, be constantly drawn to Thee. O most gentle, O original personality, master of the senses, seated in the hearts of all that be, existing both within and without, seeing all but seen by none. Unto you I offer all my respects. O Krishna, O soul of the universe, beyond the range of our perception, covered by the curtain of misconception, we are bewildered by your movements. Though you work, you are inactive. Though you take birth, you are unborn. And though you descend amongst men, sages, animals, and aquatics, you are the transcendent reality. And although you are unknown above all that be, you reveal yourself to the surrendered souls who worship you in the core of their hearts. Unto you I offer all my respects. O Krishna, O eternal master and friend, once when you were a small child, your mother Yashoda took a rope to bind you, your perturbed eyes filled with tears, and though fear personified was afraid of you, at that moment, you were afraid. How can I understand these things? O my Lord, I offer all to you. O Lord, whose glance is as cool as a lotus, who protected us from a great fire, from a poisoned cake, from cannibals, from the vicious assembly of the Kurus, from sufferings in exile, from a fierce battle, from a devastating weapon. You befriended us and stayed with us and guided us through all tribulations. I offer myself and whatever I have unto you. My Lord, your loving kindness and mercy often come clothed in strange guises, enveloped in a shroud of tribulation. Yet our journey through life is made easy by these hardships you provide. O Lord, let us not falsely claim that this world is our home. Let us not ever forget that this place is full of danger. But let the calamities come again and again, that we may remember you and meet with you again and again. For by remembering you, we no longer meet with repeated birth and death. O Krishna, those who always hear your glories, who always repeat your glories, who always see you in all things, and who always take pleasure in your pastimes, certainly find shelter at your lotus feet. My Lord, you can be easily approached, but only by those who are exhausted with sensual pleasure, unimpressed with opulence, unimpressed with fame and wealth, with prestigious birth and scholarship. Only by those who are finished with idle talk, finished with mundane beauty, finished with all forms of religiosity. My Lord, I am not afraid to be abandoned by luck, by good fortune, by friends or relatives. I am not afraid to be handled roughly. I am not afraid to wander the streets homeless like a beggar. I am not afraid to be cast away, condemned, quarantined, or exiled. O most gentle, most holy, most merciful Master, help me, prepare me. Do whatever is necessary to render fit this unworthy soul for entrance into your eternal abode.
इसे कहते हैं परफेक्ट वंदना। यदि आपने नोटिस किया, कुंती महारानी की ये जो प्रार्थनाएं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बहुत सुंदर तरीके से ये वीडियो बनाया हुआ, हमने जो चार स्वरूप लिए, दयनीयता, कृतज्ञता, स्तुति और प्रार्थना, ये चारों एलिमेंट्स कुंती महारानी की इस प्रार्थना के अंदर हमने देखे। तो जब हम भगवान के समक्ष ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को ऑफर करते हैं, न्योछावर करते हैं भगवान के सामने, तब जाकर भगवान की जो कृपा है वो सही मायने में प्राप्त होती है, जो कि पांडवों को, कुंती महारानी को, द्रौपदी को, इन सब को, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि ऐसे महाजनों को प्राप्त। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना करें, जैसे कि गोविंद दास का वो जो भजन है, भजहु रे मन, तो भजहु रे मन में मैं वो जब भजन पढ़ रहा था कुछ अरसे पहले, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था कि गोविंद दास ने वहां पर प्रार्थना अपने मन से की है। He is not praying to Krishna, he is praying to his mind. That, oh mind, you think of Krishna, I pray to you. जैसे कि महाराज कुलशेखर ने अपने एक प्रार्थना में, बहुत सुंदर, महाराज कुलशेखर की भी ऐसी प्रार्थना है, उन्होंने इस प्रार्थना में कहा है कि प्रवर्तया प्रांजलिर नाम नारायण गोचराणी। वो कह रहे हैं कि मेरी जिह्वा, अपनी जिह्वा को बोलते हैं कि हे मेरी जिह्वा, मैं हाथ जोड़कर तुझे प्रार्थना कर रहा हूं। महाराज कुलशेखर बोलते हैं अपनी जिह्वा को, मतलब अपनी जिह्वा को एक अलग अंग उसके सामने खड़े होकर महाराज कुलशेखर कहते हैं कि मैं तुझे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके यहां वहां की बातें छोड़कर तू, हे जिह्वा, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इन्हीं का नाम उच्चारण करते रहे। जैसे कि गोविंद दास ने अपने भजन में भजहु रे मन, तो उन्होंने अपने मन से प्रार्थना की। तो उसी प्रकार से ऐसे महाजन हमें सिखाते हैं कि यदि हमें हमारे अंगों से भी प्रेम है, तो हमारी जिह्वा, हमारे बाकी के कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, सब से हमको क्या प्रार्थना कर रही है कि हे ये सब कुछ लग जाओ भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की सेवा में, उनकी आराधना में, उनकी वंदना में। और यही है हमारे मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्रीमती कुंती महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंदी
गृह शिक्षाश्रम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। आज का जो